ओम शांति। आज बच्ची का शुभारंभ होने जा रहा है, तब बाप दादा की आशाओं को, दादियों की आशाओं को, सभी वरिष्ठ दीदियों की आस को पूर्ण करने वाले बाबा के दिल तख्त नशीन युगल मूरत होवनहार देवात्माओं का दिल के साज से, हृदय के भावों से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज हमारे बीच में स्नेह और शक्ति स्वरूपा, जिनके चेहरे पर सदा ही दिव्यता झलकती है, नैनों में रूहानियत झलकती रहती है, ऐसी हमारी परम श्रद्धेय प्रेरणा मूर्त आदरणीय संतोष दीदी का हम बहुत तहे दिल से जोरदार कलकल ध्वनि से स्वागत करते, अभिवादन करते, अभिनंदन करते। आप विशेष मम्मा बाबा की छत्र छाया में पले हो, जानकी दादी और विजेंद्रा दादी के साथ आप सदैव रहे हो। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के जोन इंचार्ज हो, आपने मुंबई में विशेष म्युनिसिपल गार्डन एडॉप्ट कर ईश्वरीय सेवा में एक नया कलम लगाया था। दीदी जी, आपको अव्यक्त बाप दादा ने चक्रवर्ती का वरदान दिया है, जो हम सभी सार्थक देख रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने भी आपको एक दिव्य वरदान से सजाया, वो है मैनेजर। बाबा ने कहा आप सोशल विंग के नेशनल चेयरपर्सन हो। अभी हम सुनेंगे दीदी जी से परमात्मा आशीर्वाद लेने का साधन अमृत वेले की याद तथा बच्ची का लक्ष्य। आदरणीय संतोष दीदी जी।
ओम शांति। आज इस तपस्या भट्टी में आए हुए सब युगल मूर्ति, दुनिया में जिस बात को असंभव समझते हैं, सन्यासियों ने भी जिसको असंभव समझा कि घर गृहस्थ में रह करके आग और कपूस कभी इकट्ठा नहीं रह सकता है, इसीलिए बिचारों को घर बार छोड़ना पड़ा। परंतु बाबा के बच्चों ने बाबा की शक्ति के आधार पर असंभव बात को संभव करके बताया कि कैसे साथ में रहते हुए अपने जीवन को कमल पुष्प समान न्यारा और सर्व का प्यारा बना सकते हैं। तो इसीलिए बाबा विशेष युगलों से हमेशा ही बहुत स्नेह करते थे कि जिन बच्चों ने सारी दुनिया के आगे चैलेंज करके बताया कि कैसे हम पवित्र और योगी जीवन जी करके पवित्र दुनिया की स्थापना करते हैं। आज यहाँ पर सब विशेष तपस्या भट्टी के लिए आए हैं। वैसे तो बाबा के सब बच्चे है ही तपस्वी मूरत, क्योंकि बाबा कहना माना ही योग लग जाना, बाबा कहना माना ही संबंध जुट जाना। बाबा कहते तुमने कहा हो बाबा, मैंने कहा हो बच्चे, बस इतना कहना माना बाबा का बन जाना। परंतु विशेष बीच बीच में ये तपस्या भट्टियों का आयोजन किया जाता है। ये इसीलिए तपस्या भट्टियों का आयोजन करते हैं, जैसा हम बीच बीच में मोबाइल भी तो चार्ज करते हैं, बैटरी को भी चार्ज करते हैं। तो चलते चलते प्रवृत्ति में रहते हैं, इस संसार में रहते हुए अपनी एनर्जी को सेव करते हुए और कार्य में लगाते हुए बीच बीच में इसको विशेष चार्ज करने की आवश्यकता होती है। और वैसा भी हम लोग देखते हैं कि भट्टी उसको ही कहा जाता है जिसमें कोई भी चीज डाली जाती है तो उसका रूप, उसका गुण, उसका धर्म सब परिवर्तित हो जाता है। जैसा सोने को, सोने में से खाद निकालने के लिए भी खास जो सोना रे है वो भट्टी में डालते हैं, मटका बनाने वाले जो है वो भी मिट्टी के मटके बना के खोरे में डाल करके भट्टी में डाल के उसको तपाते हैं तो उसका रूप रंग सारा बदल जाता है, उसके अंदर कितनी मजबूती आ जाती है ये हम देखते हैं। कपड़े को साफ करने के लिए भी धोबी लोग भट्टी में डालते हैं। बाबा कभी कभी बड़े मजे से कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा धोबी हूँ क्योंकि मैं आके तुम्हारे मूत पलीती कपड़ धोता हूँ। अभी बाबा ने जब कपड़ शब्द कहा तो लोगों ने समझ लिया कपड़ माना शरीर रूपी कपड़, शरीर रूपी कपड़ा उसको धोने के लिए वो गंगा की जल में चले जाते हैं। पर वास्तव में देखा जावे तो आत्मा को पावन बनाने के लिए बाबा ने हम बच्चों को लक्ष्य सौंप दिया है, जिस लक्ष्य सौंप के द्वारा और ज्ञान जल के द्वारा, योग की अग्नि के द्वारा हम 63 जन्मों के जो हमारे पाप कर्म हैं उनको दगद करके और सच्चा सोना बन जाते हैं, स्वच्छ बन जाते हैं, सतो प्रधान बन जाते हैं। इसीलिए विशेष हम लोग आपस में संगठित योग करते, क्योंकि वैसे तो हर एक बाबा का बच्चा इंडिविजुअल तो योग लगाता ही है, परंतु वो जो इंडिविजुअल योग होता है उसकी शक्ति और सर्व को मिलकर के जब योग किया जाता है उसकी शक्ति में रात दिन का फर्क होता है। आप लोग घर में भी योग करते हैं, कर्म करते भी योग करते हैं, क्लासेस में भी योग खास करते हैं, परंतु खास हम यहाँ मधुबन में जब आते हैं तो इतने सब ब्राह्मण एक ही बाबा की याद में जब बैठते हैं, जैसा एक लकड़ी जलाओ तो उसकी गर्माश, उसकी रोशनी, उसकी तपत कितनी होती है, और अनेक लकड़ियों को अगर संगठित रूप में जलाया जावे तो उसकी कितनी रोशनी होती। तो जिस समय हम संगठित रूप में बैठ के एकाग्र होकर के सब मिलकर के बाबा को याद करते हैं उस समय की जो योगाग्नि है वो योगाग्नि ऐसी प्रज्वलित होती है जो हमारे अंदर की जो कमियां हम अकेले बैठ करके योग लगाने से नहीं निकलती, परंतु संगठित रूप में जब योग करते हैं और लक्ष्य रखते हैं कि मेरे अंदर ये कमी कमजोरी है, मेरे अंदर ये वीकनेस है, इसको मेरे को इस भट्टी में स्वाह करके जाना, तो ऐसी पावरफुल योग की अग्नि जला करके एकाग्र चित होकर के एक बाबा की याद में जब बैठते हैं तो उससे हम जिन विचारों के ऊपर जिन विकारों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं वो संगठन में सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। और जब इतना बड़ा संगठन देखते हैं तो तब हमें भी लगता है कि हम अकेले नहीं चल रहे हैं, परंतु हमारा बहुत बड़ा काफिला चल रहा है। वैसे भी आप देखेंगे जब यात्रा पर जाते हैं या कहां भी जाना होता है तो एक दो को ऑफर करते हैं, आप चले गए, क्योंकि अकेला जाना और साथ के जाने में बहुत फर्क होता है। तो यहाँ भी जब हम अपने जैसों को ही देखते हैं कि कैसे प्रवृत्ति में रहते हुए निवृत्त होकर के और इस ईश्वरीय मार्ग पर चल रहे हैं, वो देख करके हमारी हिम्मत बढ़ती है, हमारे कदम और भी फास्ट हो जाते हैं और पुरुषार्थ में तीव्रता आती है। परंतु बाप दादा हम बच्चों को ये भी कहते हैं कि बच्चे प्रोग्राम के आधार पर तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं होनी चाहिए। अगर प्रोग्राम के आधार पर हमारी प्रोग्रेस होती है, उन्नति होती है, तो प्रोग्राम पूरा होने के बाद फिर जिधर से उधर ही ठहर जाते। परंतु ये जो विशेष बल दिया जाता है, विशेष जो तपस्या की जाती है, उसका फायदा आगे के लिए हमें जीवन में सदा चलता रहे, उसके लिए हमें एक दृढ़ संकल्प करना है कि यहाँ से हम ऐसी तपस्या करके जावे जो सदा के लिए हमें और भी इजी हो जावे इस मार्ग पर चलना, अनेक आत्माओं को चलाना भी बड़ा सहज हो जावे, ऐसी पावरफुल तपस्या करके जावे। क्योंकि रोशनी तो सब देते हैं, आप एक ट्यूबलाइट लगाएंगे तो भी रोशनी होती है, बड़ा बल्ब लगाएंगे तो भी रोशनी होती है, हाइड्रोजन लगाएंगे तो भी रोशनी होती है, परंतु रोशनी में फर्क होता है। तो उसी प्रकार हम आत्माएं रूपी दीपक तो सब जग गए हैं, परंतु हमारी रोशनी कहाँ तक फैल रही है, कितनी आत्माओं को रास्ता बता रही है, क्या हम पहले स्वयं प्रकाशित हुए हैं? इन सब बातों को चेक करने के लिए हमें बीच बीच में ये थोड़ा 4-6 दिन का जो विशेष समय मिलता है कि खुद की चेकिंग करो, एकांत में बैठ करके अपने से बातें करो और फिर अपने को चेक करके चेंज कर लो। साकार बाबा हम लोगों को हमेशा कहते थे, बच्चे जब तुम मधुबन में आते हैं तो तुम्हारे पास बहुत फुर्सत होती है, ये तो आप भी अनुभव करते हैं, यहाँ तो कोई काम ही नहीं होता है। हमारी माताएं तो बड़ी खुश होती है, पियर घर में आ गए हैं, थाली हाथ में मिलती है, खाना ना पकाना पड़ता है ना खिलाना पड़ता है। भाई भी बड़े खुश होते हैं क्योंकि बहुत फुर्सत होती है। तो बाबा हमेशा कहते थे साकार बाबा, बच्चे तुमको जब भी समय मिलता है उस समय तुम हिस्ट्री हॉल में जाके बैठ जाओ। आज भी आप हिस्ट्री हॉल में जाएंगे तो श्री कृष्ण लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलेट का त्रिमूर्ति वाला चित्र है, वो खास बाबा ने लाइट का बनाया था। तो बाबा कहते थे आप इनके आगे बैठ जाओ और इनके आगे बैठ के अपनी भेंट इनके साथ करो कि इसके अंदर जो जो गुण हैं, इनके अंदर जो जो विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं वो गुण हमारे में कितना परसेंटेज आए, क्योंकि ये चेकिंग के लिए फुर्सत चाहिए। अभी लक्ष्मी नारायण के साथ भेंट करने के बजाय अगर हम साकार बाबा को ही सामने रखते हैं और अपनी भेंट करते हैं कि बाबा की जो विशेषताएं हैं, बाबा की जो शक्तियां हैं, उसमें से अभी तक हमने कितनी भरी है, तो भेंट करने से ही हम अपनी कमियों की भेंट चढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए जो भी ये समय आपको विशेष 3-4 दिन का मिला हुआ है, इसमें अंतर्मुखता की गुफा में बैठ करके ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर योग की शक्ति भर करके जाना, ज्ञान का श्रृंगार करके जाना, ताकि जब कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो ये सर्व शक्तियां हमारे काम में आवे। तो इसीलिए विशेष ही प्रोग्राम बनाए जाते भट्टियों के लिए, जिससे हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है और भी पावरफुल बन जाते हैं और सहज रीति से इस मार्ग पर चल सकते हैं। तो आप भी सभी यही लक्ष्य रख के आए होंगे, परंतु हरेक कोई बैठ करके खुद को चेक करके और अपने अंदर जो भी कमी कमजोरी है वो चेक करके वो कागज के ऊपर लिख के बाबा के पास उसको दान में पहले से ही दे दें, और ये दृढ़ संकल्प करना कि बाबा आज से हमने ये दान कर दिया, ये छोड़ दिया, तो आपको बाबा मदद करेगा, आगे के लिए कभी भी वो जो कमजोरी है आपको सताएगी नहीं। क्योंकि वैसे भी राखी के दिन चल रहे हैं ना, तो राखी जो है वो तो प्रतिज्ञा का सूचक है, तो इसीलिए हमें खुद को परिवर्तन करने के लिए, दुनिया वालों को तो हम राखी बांधते पवित्र बनने के लिए, परंतु हम बाबा के जो बच्चे हैं उनका जन्म ही पवित्रता के आधार पर हुआ है, वो पवित्र है, इसीलिए उनको ब्रह्मा कुमार और कुमारी कहा जाता है। तो पवित्रता वो तो धारण कर लिया, परंतु अभी और जो भी थोड़ा भी अगर किन विकारों का अंश मात्र रहा हुआ है, क्योंकि पवित्रता का अर्थ है संपूर्ण पवित्र, जिसमें विकारों का अंश भी नहीं हुए, उसके वंश को भी अगर खलास कर देंगे तो आगे के लिए हमारे को संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए बहुत ही सहज हो जाएगा मार्ग। तो अभी हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद नेचुरल है, आप सभी का यही लक्ष्य रहता कि हमें यहाँ से ज्यादा फायदा लेके जाना है, इस लक्ष्य को रखकर ही यहाँ पर आते हैं। अभी हम अगर अपनी सारे दिनचर्या को अगर आंखों के सामने लाते हैं, तो दिन का जो प्रारंभ है वो अमृत वेले से होता, भक्ति मार्ग में भी गायन करते हैं, राम सिमर प्रभात मेरे मन, क्योंकि प्रभात का बड़ा महत्व है, उसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। उस समय हम देखते हैं सब आत्माएं विश्राम करती हैं, चारों ओर शांति शांति होती है, इसीलिए ब्रह्म लोक में शांति धाम में जाना बड़ा इजी होता, किसी के भी संकल्प हमको टकराते नहीं है, ठहराते नहीं है, हम सीधा एक सेकंड में अपने घर में बाप के पास पहुंच सकते। तो ऐसा जो अमृत वेले का समय है, उस अमृत वेले के समय का हमारे पास कितना महत्व है, उसको हम कितना उसका फायदा ले रहे हैं, क्योंकि बाबा ने अमृत वेले को खास वरदान दिया है। उस समय हम बाबा से सर्व शक्तियां ले सकते हैं, अमृत वेले बाबा से हम अपनी कोई भी दिल की बात है वो कर सकते हैं, अमृत वेले हमको जो मदद चाहिए वो हम बाबा से ले सकते हैं। वैसे भी आज कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा, चाहे प्रेसिडेंट होवे, प्राइम मिनिस्टर होवे, परंतु वो अपनी फैमिली के लिए खास टाइम जरूर निकालता है। अगर फैमिली के लिए टाइम नहीं निकालेगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसको घर वाले कोई पूछते नहीं। भले देश का प्राइम मिनिस्टर बन के चल सकता है, घर वाले नहीं पूछेंगे। तो उसी प्रकार हमारा बाबा विश्व पिता है और सारे कल्प में बाबा एक ही बारी यहाँ आता है। एक बारी आकर के बाबा को बहुत कार्य करना होता है, सारी पुरानी सृष्टि को परिवर्तन करना है, पांच तत्वों को भी परिवर्तन करना है, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करनी है, बच्चों को पतित से पावन बनाना है, भटकी हुई आत्माओं को ठिकाने लगाना है, मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बतानी है। अभी बाबा को तो कितने काम होते, बाबा सारा समय पूरा बिजी रहता है। परंतु हमें ये देखना है कि बाबा इतना बिजी होते हुए भी अमृत वेले का जो समय है बाबा ने अपने बच्चों के लिए अलग रख दिया, कि अमृत वेले हमारे भाई बहन कभी कभी अमृत वेला अपनी सुविधा के अनुसार बनाते हैं। जिस समय आग खुली उस समय उनका अमृत वेला, बाबा वो मानने को तैयार नहीं। अमृत वेला माना बाबा ने जो समय मुकर्र किया है सवेरे 3 बजे से 5 बजे तक, या यहाँ जैसा होता है हम सब 4 बजे से 4:45 बजे तक संगठित रूप में योग करते हैं। तो ये जो अमृत वेले का 2 घंटे का समय, 1 घंटे का समय जो हम निकालते हैं, इसके ऊपर हमारी सारी दिनचर्या का आधार होता। कहा जाता है अगर आपका मॉर्निंग गुड होगा तो आपका आफ्टरनून भी गुड हो जाएगा, आपका आफ्टरनून गुड होगा तो आपका डे भी गुड हो जाएगा, आपका डे गुड होगा तो आपकी इवनिंग भी गुड हो जाएगी, और आपकी इवनिंग गुड होगी तो आपकी नाइट भी गुड हो जाएगी। तो बाबा जो है वो तो सदैव हम बच्चों को प्राप्तियां कराने वाला है। तो अभी हम ये देखते हैं, मैं समझती हूँ मेजॉरिटी तो बाबा के बच्चे अमृत वेले जरूर उठते हैं और बाबा से रूरियान भी करते हैं। कौन कौन करता है जरा हाथ ऊपर करे, बहुत करके करते, अभी जो नहीं करते होंगे वो चालू करना। तो मेजॉरिटी बच्चे सवेरे उठ करके बाबा से जरूर रूरियान करते हैं, अपना समय उसमें लगाते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम नेमीनाथ तो बन जाते हैं, परंतु सिर्फ नेमीनाथ बनने से कुछ नहीं होगा। नियम है हमारा सवेरे उठने का, सवेरे उठ गए, विधि प्रमाण तुम बच्चों को बाबा को याद करना है। तो विधि प्रमाण याद करने के बजाय अभी उठ के क्या करेंगे, आज समझो कोई नींद में सोया पड़ा है या मैं ही सोई पड़ी हूँ, हमारे से कोई मिलने को आता है, चाहे दोपहर का समय है कोई मिलने को आता है, तो उसको मिलने के पहले हम क्या बोलते हैं, हमको उठाते हैं, भाई फलाना मिलने को आया आपसे, हम कहते हैं अच्छा ठहरो मैं मुंह धुलाई करके आ। हाँ किसी से भी मिलना होता है तो नींद वाला मुंह लेके नहीं जाते हम, जरा मुंह धोके ठीक होकर के और पीछे जाते। अभी हम देखते हैं बहुत ऐसा करते हैं ब्राह्मण, सवेरे उठ के सीधा जिस खटिया के ऊपर सोया होता है, जिस बिस्तरे के ऊपर सोया हुआ होता है, वहीं बैठ करके बाबा को गुड नाइट गुड मॉर्निंग करते, गुड मॉर्निंग करके वहां बाबा की याद में बैठ जाते हैं। पर बैठे बैठे कभी गुड नाइट हो जाती है ये मालूम ही नहीं पड़ता, क्योंकि सारी रात जिस बिस्तरे पर सोया हुआ होता है उसमें हमारे वाइब्रेशन होते हैं नींद के। और ये आप ध्यान में रखना, माया को सहन नहीं होता है, हम बाबा से माल खरीद करते हैं, इतना दिन तो हम माया से माल खरीद करते आए, कभी काम तो कभी क्रोध तो कभी लोभ कभी मोह, हम उसके पुराने ग्राहक हैं। अभी आधा कल्प के हम ग्राहक, हमने उसको अभी छुट्टी दे दिया, अभी हमने बाबा से माल खरीद करना चालू कर दिया, सुख शांति आनंद प्रेम, तो उसको कैसा सहन होगा। आज किसी दुकानदार का कोई पुराना ग्राहक कहाँ जाता है, उसके पीछे पीछे घूमता है, भाई इधर आ, तू मेरा इतना पुराना ग्राहक, तू मेरे को छोड़ के कहाँ जा रहा है। अरे चल पैसा नहीं देना, मुफ्त में ले जा, पर ले जा मेरे से ही माल लेना। तो माया भी देखती है इन्होंने मेरे को छोड़ दिया और ये भगवान के पीछे लग गए हैं, उससे ही सब कुछ लेना चालू कर दिया है, तो वो भी अमृत वेले ही आके इंटरफियर करती। आपका सारा दिन सिर दर्द नहीं होता होगा, पर सवेरे सिर दर्द चालू हो जाएगा, कभी वो पेट में घुस जाती है, पेट दर्द हो जाता है, कभी टांगे दर्द होती जो हो जाती है, कुछ ना कुछ बहाना चालू होता है। तो क्या होता है, विधि के प्रमाण न बैठने के कारण उठ तो गए हम, बाबा से गुड मॉर्निंग भी कर लिया, परंतु विधि के प्रमाण नहीं बैठे तो उधर ही क्या होता है, कभी झुटके मारते कभी सो जाते हैं। और फिर हम कहते हैं हमने तो बाबा से गुड मॉर्निंग किया ना, हम अमृत वेले उठे थे, पर कितना समय बैठे, 5 मिनट 10 मिनट। तो मैंने कितनी शक्तियां भरी, मेरा बुद्धि का योग लगा या सिर्फ गुड मॉर्निंग किया और बात पूरी हो गई। वैसे भी आप देखेंगे तो हमारा अगर सारा दिन हमारे ऊपर अटेंशन नहीं है तो अमृत वेला हमारा पावरफुल नहीं हो सकता। आज अमृत वेला हमें पावरफुल करने के लिए अपनी सारी दिनचर्या पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस सवेरे के समय का महत्व हमारे भारत में बहुत होता है। अगर किसी का कोई दिन अच्छा नहीं जाता है ना, तो कहते पता नहीं आज सवेरे सवेरे किसका मुंह देख लिया, जैसे का मुंह देखते हैं कहते वैसा ही दिन जाता है। अच्छे व्यक्ति का मुंह देखेंगे तो अच्छा दिन जाएगा, अगर खराब व्यक्ति का मुंह देखते हैं तो खराब दिन जाता है। अगर भगवान का मुख देखेंगे, बाप दादा का मुख देखेंगे, तो बताओ कितना अच्छा दिन जाएगा। तो इसीलिए सवेरे उठ करके बाबा को याद करने के लिए, हमारी मनमोहिनी दीदी थी, अभी 28 तारीख को दीदी का हुआ ना दिन, मनमोहिनी दीदी थी, मनमोहिनी दीदी सवेरे 3:30 बजे उठ के पहले स्नान करती, स्नान करके पीछे बाबा की याद में बैठती थी। क्यों? क्योंकि झुटका नहीं आ। बाबा कहते थे बच्चे अगर तुमको कमाई के समय झुटका आता है, कोई दुकानदार है दुकान पर बैठा है और कमाई के समय झुटका खा रहा है, तो उसका टप्पर ही सामने वाला उठा के ले जाए, तो अगर तुम बैठ के झुटका खाएंगे तो तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा, सारा माल खलास हो जाएगा। इसीलिए कभी भी झुटका भी नहीं खाना और गुटका भी नहीं खाना। आजकल गुटके पता नहीं कौन से निकले, उस गुटके की बात नहीं, वो तो खाते ही नहीं है ब्राह्मण, परंतु अंदर ही अंदर संकल्पों के गुटके। तो जिस समय हम अमृत वेले उठ के बाबा की याद में बैठते हैं, उस समय हमको विधि प्रमाण बाबा को याद करना है, क्योंकि वो हमारा पिता भी है, साजन भी है, बंधु भी है, सखा भी है। तो अभी बाबा को विधि प्रमाण याद करना माना फ्रेश होकर के बैठना, वो जो रात का सोया हुआ बिस्तर है उसको छोड़ देना। अभी किन किन के तो घर भी छोटे होंगे, तो अभी कहाँ बैठेंगे जाके, ज्यादा कहा नहीं तो उस बिस्तरे को लपेट करके आप उधर बिस्तरे को छोड़ के तो बैठो, बैठने को कितनी जगह लगती, छोटी सी तो जगह लगती। तो वहाँ बैठ करके आप पीछे शिव साजन से मिलन अपना मना, तो क्या हो जाएगा, उस मिलन में आपको आनंद आएगा। बाबा कहता है कि तुम मेरे साथ बातें करो, मैं उस समय फ्री हूँ, तुम जो बात करेंगे, जो प्रश्न पूछेंगे उसका मैं रिस्पांस दूंगा। अभी कभी कभी हमारे भाई बहन क्या कहते हैं पता नहीं क्या है, हम तो बाबा से पूछते हमको बाबा जवाब ही नहीं देता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, बाबा जवाब देता है पर हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर न होने के कारण उसको हम कैच नहीं कर सकते। आज समझो कोई फोन करता है, अगर लाइन क्लियर नहीं तो वो भी उधर से चिल्लाता रहता है, हेलो हेलो करता रहता है, हम भी करते रहते हैं, आवाज ही नहीं आती। तो उसी प्रकार सबसे पहले हमको अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर करने की आवश्यकता, और बुद्धि की लाइन क्लियर उसकी होती है जिसका मन क्लीन है। अगर मन साफ है, हमेशा कहा जाता है दिल साफ तो मुराद हासिल। अगर हमारा दिल साफ है, अंदर बाहर अगर हमारे में सच्चाई और सफाई है, तो हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर रहेगी। और बाबा भी देखो किसके ऊपर राजी होता है, सच्चे दिल पर साहब राजी। तो सच्चे दिल रख के जब हम लगन से बाबा की याद में बैठते हैं, वो हमारे पर राजी हो जाते। तो अभी ऐसा नहीं हमने अमृत वेले बाबा को याद कर लिया, उसके बाद सारा दिन हमको फुर्सत ही नहीं मिली उसको याद करने की, सारा दिन हमने अपने ऊपर अटेंशन नहीं दिया, तो अमृत वेले फिर आप उसको याद नहीं कर सकते। अमृत वेले के बाद सारा दिन कर्म योगी बन करके, बाबा ने हम बच्चों को पढ़ाई का भी बताया, वो हमारा बाप है, बाप के रूप में हम अमृत वेले उससे बातें करते हैं, उससे शक्तियां भरते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं, फिर वो टीचर है, मैं उसका स्टूडेंट हूँ, फिर हम पढ़ाई पढ़ते, चाहे क्लास में आ सकते हैं, कोई इन दी सरकमटेंस नहीं आ सकते। आजकल हमारे भाई बहन क्या बोलते हैं, अरे आप क्लास में नहीं आते। बहन जी आजकल ना मुरलियां मोबाइल में भी आती हैं, व्हाट्सएप में भी है, सब में है, टीवी में है, हम घर बैठे क्लास कर लेते। अभी आप हमारे को बताओ, स्कूल में जब स्टूडेंट पढ़ता है उसके प्रेजेंट के भी उसके मार्क्स होते, उसका जब फाइनल रिजल्ट होती है ना उसमें प्रेजेंट के मार्क ऐड किए जाते, तो हमारे भी प्रेजेंट के जो मार्क है वो ऐड होते हैं। आप ऐसा नहीं समझना मैंने घर बैठ करके पढ़ लिया या मैं ही हूँ, मैं वहां वरदानी में बैठ के पढ़ लेगी तो मेरी प्रेजेंट हो, नहीं, मेरे को क्लास में आना चाहिए। हमको क्लास में बैठना है क्योंकि संगठन का बल ये बहुत बड़ा बल है, और जिस समय हम संगठन में बाबा की मुरली सुनते हैं उस सुनने में हमारे को बहुत सारे रतन मिलते हैं, बहुत शक्ति मिलती। तो मुझे प्रेजेंट मार्क का भी क्या करना है, जरूर ध्यान रखना है। जितना समय हम क्लास में बैठे होंगे नेचुरली हमारी बुद्धि बाबा के साथ रहेगी। अगर घर में बैठ करके आप टीवी पर मुरली सुन रहे हैं या मोबाइल में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, थोड़ा सुनेंगे थोड़ा इधर ध्यान जाएगा, थोड़ा उधर जाएगा, थोड़ा उधर जाएगा, एकाग्रता तो नहीं हुई ना। तो पढ़ाई का मतलब ये एकाग्रता। तो मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ इसीलिए मुझे एकाग्र होकर के पढ़ाई, रोज का लेसन बाबा कितना पढ़ाता है, एक घंटा, वो एक घंटा मेरे को पढ़ाई जरूर पढ़नी है, मेरे को रेगुलर और पंचुअल बनना। हम देखते थे मनमोहिनी दीदी जो थी वो बड़ी रेगुलर और पंचल थी, इतनी बड़ी आयु में, जिन्होंने भी दीदी को देखा होगा, आप तो पुराने लोग हैं, दीदी हमेशा कापी और पेंसिल ले करके दादी मुरली सुनाती थी उसके पहले क्लास में आके बैठ जाती, दादी मुरली सुनाएगी दीदी नोट्स लेती थी बैठ के, हम लोग भी लेते थे, दीदी नोट्स लेती थी, प्रश्न उत्तर निकालती थी, फिर क्लास पूरा होता था हम लोगों जैसों को बुलाती, इधर आओ इधर आओ, हम ज्ञान का बैडमिंटन खेलेंगे, तो बैठ करके दीदी प्रश्न पूछती थी उसी मुरली के, हम लोग भी लिखते थे वो भी लिखती थी, पर हम बोध करके फेल हो जाते थे उत्तर देने। वो इतना ट्रिक से बैठ करके मुरली को सुनती थी और अपने पास नोट करती थी। फिर दीदी का जो भी पत्र जाता था ना, पीछे हमेशा प्रश्न उत्तर होते थे उस मुरली के। तो पढ़ाई की रुचि, पढ़ाई में अगर रुचि है तो पढ़ाने वाले के साथ हमारा बुद्धि का योग। पढ़ाई याद रहेगी तो पढ़ाने वाला भी याद रहेगा ना, याद का देखो ऐसा चार्ट होता है। फिर बाबा ने कहा बच्चे कर्म योगी बन के कर्म करो, तो कर्म योगी बनकर के कर्म करो, कर्म करते हुए योग में रहो, नहीं योग में रह करके कर्म करो। बाबा ने हम बच्चों को ये अंडरलाइन कराया, योग में रह के कर्म करना है, कर्म करते हुए योग करना हम इजी कर लेते हैं, दोनों में अंतर है। योग में रह के कर्म करना और कर्म करते हुए योग करना, इसमें अंतर। योग में रह के कर्म करना अर्थात हमारा फुल अटेंशन बाबा की तरफ है और हम कर्म कर रहे हैं, और कर्म करते हुए योग में रहना मना हम कर्म कॉन्शियस बन गए हैं, जब भी फुर्सत मिलेगी तभी योग करेंगे। तो जो कर्म करते योग करते हुए कर्म करते हैं, योग में रह के कर्म करते हैं, उन्हें वो अच्छा बनते हैं उसके रिजल्ट। और जो कर्म करते हुए योग में रहते हैं, अच्छा बनने की इच्छा रखते हैं, अच्छा बन नहीं सकते, तो दोनों की रिजल्ट में भी फर्क है, दोनों की विधि में भी फर्क है। तो सारा दिन हमको ये ध्यान में रखना है कि हमें योग में रह करके कर्म करना है। बाबा कहते हैं तुम भोजन बनाओ बाबा की याद में बनाओ, भोजन खाओ बाबा की याद में खाओ। नहीं तो क्या होता है, देखो हम खाना चालू करते हैं बाबा याद रहता है, उसके बाद धीरे धीरे हम कर्म कॉन्शियस हो जाते, खाने में लग जाते, बाबा भूल जाते। तो इसीलिए अगर हम पहले प्राधान्य देते हैं बाबा की याद का, तो उससे क्या हो जाएगा, बाबा की याद बनी रहेगी और कर्म भी साथ साथ में चलता रहेगा, कर्मों में श्रेष्ठता आती जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं निमा शाम के समय, जब समय मिलता है तो ठीक है, नहीं तो काम धंधे वाले अच्छा खास बैठ के समय नहीं मिलता है। रात को सोने के पहले बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे सोने के पहले तुम अपनी खटिया पर अपने बिस्तरे के ऊपर बैठ के अपनी सारी दिनचर्या को चेक करो। जब सारी दिनचर्या को चेक करेंगे तो जैसे व्यापारी लोग हैं वो अपना हिसाब किताब देखते हैं ना, रोज कितना नफा हुआ कितना नुकसान हुआ, उसके बाद चौपड़े को बंद कर डालते। तो उसी प्रकार अपनी सारी दिनचर्या बाप को दे करके, बाप को बता करके तुम बाबा की याद में बाबा की गोदी में जाके सो जाओ। तो सवेरे अमृत वेले उठने की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आप नहीं उठेंगे तो बाबा आपको उठाएगा। बहुतों को अनुभव होता है बाबा उठा रहा है, जिस जिसको अनुभव है हाथ ऊपर करो, देखो देखो अनुभव है ना, बाबा कभी खटिया हिला देगा तुम्हारी, कभी चादर खींच लेगा, हाँ ऐसा लगेगा अरे पता नहीं कौन चादर खींच रहा है कौन खटिया हिला। परंतु जब ही बाबा की याद में, देखो सारा दिन अगर हमारी योग की लिंक बनी रहेगी तो अमृत वेले जब ही हम बाबा की याद में बैठेंगे, अंत मते सो गते कहा जाता है ना, तो रात को सोने के समय की जो हमारी स्थिति होगी ना, उसका असर दूसरे दिन उठने के ऊपर होता है। वो अंत हो गई ना हमारी दिनचर्या की, अंत है, आपको गारंटी है कि कल हम उठेंगे या नहीं उठे। तो इसीलिए हम ऐसा अपना हिसाब किताब चुप चुप करके सोवे कि हम बाबा के पास जा रहे हैं। तो इसीलिए अपने ऊपर इतना अटेंशन रख करके जब हम चलते हैं तो सवेरे आपे ही आंख खुलती है। और बाबा को आप सिर्फ एक संबंध से याद नहीं करो, एक ही तरीके से याद नहीं करो, मैं आत्मा शिव बाबा का संतान हूं, मैं उसमें क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं बैठे बैठे और फिर नींद करते। नहीं, बाबा कहता है मेरे साथ तुम्हारे सर्व संबंध है, कभी मेरे को सखा बना लो, कभी मुझे बंधु बना लो, कभी तुम अपने को मैं, तुम मेरे को बाप बना लो। अगर आपको फिर भी नींद आती है अमृत वेले उठ करके, तो आप उस समय पर कोई मुरली पढ़ लो, थोड़ी सी अव्यक्त मुरली पढ़ लो, साकर बाबा की मुरली पढ़ लो, थोड़ी सी स्टडी कर लो, तो क्या हो जाएगा, आपके आपको नींद नहीं आएगी। अभी रात को सोते समय अगर गपशप मार के सोते हैं, रात को सोने के पहले टीवी देख के सोते हैं, न्यूज क्या लगी है, क्या आई है, क्या नहीं आई है, अभी आप इतना बाढ़ हो रही है, सारा लोगों के घर बह रहे हैं, ऐसी दर्दनाक सीने देख के सोएंगे तो क्या होगा बताओ, दिनचर्या कैसी बनेगी, स्थिति कैसी रहेगी, सवेरे स्थिति ठीक नहीं रहेगी। तो इन बातों को देखने के लिए रात का समय नहीं है सोने का, या सवेरे अमृत वेले उठ के पहले देखने का समय नहीं, पीछे देखो भले, बाबा मना नहीं करता, परंतु अपनी जो सूक्ष्म दिनचर्या है, जैसा हम अपनी स्थूल दिनचर्या बनाते हैं ना, कहा जाता है खाली मन शैतान का घर। अगर मन को थोड़ा भी खाली दिया, मार्जिन दिया, तो माया रूपी शैतान आ जाता है। तो अमृत वेले को हम जितना जितना पावरफुल बनाते हैं, उतनी हमारी दिनचर्या पावरफुल होती है, जितनी दिनचर्या पावरफुल होती है उतना हमारी नाइट और अमृत वेला पावरफुल होती है। आपको कभी फालतू सपन आएगा ही नहीं, संकल्प ही नहीं आता है तो सपन काहे को आएगा, आने की बात ही नहीं होती, क्योंकि हम बाबा की याद में रहते। तो इसीलिए याद की लिंक बना करके रखो, लिंक को कभी भी तोड़ना नहीं, तोड़ेंगे तो जोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है, अगर लिंक बना के चलते रहते हैं तो हमारे को बाबा के द्वारा शक्तियां, गुण, ईश्वरीय प्राप्तियां जो है उसका फ्लो आता रहता है। अगर हमको विश्व का मालिक बनना है तो बनना हो, बाबा जबरदस्ती नहीं कर, अगर मालिक बनना होगा तो ये सारा करना पड़ेगा, अगर जो मिलेगा सो चलेगा फिर तो उसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बाबा का बने तो पासपोर्ट मिल जाता है स्वर्ग में जाने का, उसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं है, परंतु ऊंचा पद जिसको पाना है उसको इन सब बातों का ध्यान जरूर रखना। इन बातों का ध्यान रख करके जब हम चलते हैं, अपने ऊपर अटेंशन रख करके चलते हैं और हमेशा बाबा को सामने रखते, बाबा की देखो इतनी बड़ी आयु थी, बाबा अमृत वेले बैठ करके हम लोगों को ड्रिल कराता था, अरे ऐसी पावरफुल ड्रिल कराता था बात मत पूछो, हमेशा नहीं, वो तो था ही जागती ज्योति। कभी कभी बाबा सारी सारी रात नहीं सोते थे, बाबा से पूछते थे बाबा आज आपको नींद नहीं आई क्या, बाबा कहते थे नहीं बच्चे मुझे नींद नहीं आई, क्यों नींद नहीं आई, क्योंकि बांधेली गोपिकाएं बिचारी तड़प रही है, रो रही है, पुकार रही है, चिल्ला रही है बाबा हमको छुड़ाओ, तो उनकी जो पुकार है ना वो कानों में आ रही है, दुखियों की पुकार आ रही है, भक्तों की पुकार आ रही है, आपको और हमको पुकार क्यों नहीं सुनाई पड़ रही, क्योंकि हम अपने ही आवाज सुन रहे हैं, जो खुद आवाज करेगा उसको दूसरे का आवाज आता है क्या, अभी मैं आवाज कर रही हूँ दूसरे का आवाज मेरे तक नहीं पहुंचेगी, तो हम जब खुद आवाज में ही रहते हैं, आवाज से परे जाने का पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं, तो दूसरे का आवाज, दुखियों का आवाज हमको कहाँ से आए। और लोग गीत गाते हैं दुखियों पर रहम करो माँ बाप, हाँ हमारे पर रहम करो, हमारे पर दया करो, हमारे को दुखों से छुड़ाओ, वो सिर्फ भगवान को नहीं कहते, भगवान के बच्चों को भी कहते हैं हमको दुखों से छुड़ाओ, क्योंकि बाबा दुख हरता सुख करता है तो हम बच्चे भी दुख हरता सुख करते हैं, तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम्हारी जो स्टेज है वो दुखियों का आवाज सुनने वाली स्टेज होनी चाहिए, तभी तुम दुखियों के ऊपर रहम करेगे, दुखियों को तुम तभी छुड़ा सकेगे, उसके लिए आवाज से तुम्हें परे जाना है, और आवाज से परे जाने की जो प्रैक्टिस है वो अमृत वेले सबसे अच्छी। तो उसके द्वारा क्या है, अमृत वेले हम बाबा के द्वारा जब अपने अंदर शक्तियां भर लेते हैं, वो शक्तियां सारा दिन हमको काम में आती, और देखो ऐसी दिनचर्या बाबा ने बना के दिया है, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल क्यों करना, ट्रैफिक कंट्रोल से क्या होता है, जो व्यर्थ विचार आता है वो तुरंत क्या होता है, ब्रेक लग जाता है। अरे चलो चलो, 5:30 बज गया, 7:30 बज गया, ट्रैफिक कंट्रोल चालू हो गया। तो इसीलिए उसके ऊपर, युक्तियों के ऊपर हमको हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो दिनचर्या के ऊपर ध्यान होने के कारण उससे क्या होता है, हमारी बहुत कमाई होती है। क्योंकि संगम युग ये एक ऐसा युग है जिस युग में हम सारे कल्प की कमाई करते हैं। फिर तो खाना ही खाना है, और क्या है। सतयुग त्रेता में क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते। द्वापर के जन्म भी देखेंगे तो इस समय जो कमाई की है वो काम में आती है हमारे। जो पुजारी बनते हैं पूज्य के आधार पर ही तो पुजारी बनते हैं ना, जो जितना बड़ा पूज्य वो पुजारी भी इतना बड़ा बनता है। जैसा देखो विक्रमादित्य राजा है श्री लक्ष्मी नारायण, वही विक्रमादित्य जाके बनता है। तो यथा राजा तथा प्रजा, हम लोग भी उसके साथ ऐसे ही बनते हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है बच्चे अभी कमाई करने का समय है, कमाई करने के समय अलबेलापन और आलस जो है इन दो बातों को छोड़ना है। कमाई के समय ना आलस चलता है ना अलबेलापन चलता है, इसमें बड़ा अलर्ट रहना है और आलस का त्याग करना है, चुस्त होकर के चलना है कि कहाँ हमारे को कभी भी नुकसान न हो जाए, सदैव हमारी कमाई चलती रहे, हमारी कमाई से औरों को भी फायदा होता रहे। जो खुद कमाई करेगा वो क्या करता है, लौकिक में भी ऐसा होता है ना, समझो किसी का धंधा बहुत अच्छा चलता है, अपने मित्र संबंधियों को भी बुलाता है, अरे ये धंधा बड़ा अच्छा है तू भी कर, ये इसमें बड़ा फायदा है। तो हमारा अगर ये कमाई का धंधा अच्छा चलेगा, हमारे मित्र संबंधी तो ब्राह्मण है ना सब, तो हम भी क्या करेंगे, औरों को भी साथ में लेके चलेंगे। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को काम दिया है, तुम अकेले नहीं चलते हो, तुमको सबको साथ में लेकर के चलना है। तो साथ में लेके चलने की भी तो ताकत चाहिए ना सबको, और वो ही कर सकता है जो खुद सदैव बिजी रहता है। बिजी भी रहो और इजी भी रहो, कमाई करने में बिजी रहो और वैसा तो एकदम इजी रहो, बस बाबा के साथ लगे रहो, कोई टेंशन नहीं। और जब भी हम, बाबा ने हम बच्चों को ये अमृत वेला खास दिया हुआ है, बाबा की आज्ञा का पालन करने के कारण बाबा हमको एक्स्ट्रा मदद कर, ये हमेशा ध्यान में रखें। जो बाबा ने कहा वो अगर हमने किया उसी समय तो हमारे को क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। तो वरदानी समय है, उस समय वरदान देने का समय होता है, बाबा के भंडारे खुले हैं। बाबा कहता है लूट सके तो लूट, उसका हद का भंडारा तो है नहीं, उसका तो बेहद का भंडारा है और खुला भंडारा है। जिसको जितना चाहिए उतना लूटो, वो कभी किसी को रोकता नहीं है। लेने वाले नंबर वार लेते हैं, देने वाला तो नंबर वन देता है। देने वाला दे रहा है, कहते हैं ना देंदा दे लेंदा थक पाए, देने वाला देता है पर लेने वाला थक जाता है। तो हमें थकना नहीं है, लेने में अगर थकेंगे तो देने में थकेंगे ना। फिर अगर हम बाबा से लेने में थक रहे हैं तो फिर औरों को देने में भी थक जाएंगे। इसीलिए हमारे को सदैव बाबा से लेते रहना है, और लेकर के फिर क्या करना है, खुद के पुरुषार्थ में भी लगाना है, अन्य आत्माओं को भी बांटना है। तो वरदानी समय को पहचान करके बाबा के साथ सब वरदान लेकर के हमारे को सदैव अपने पुरुषार्थ में क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है। तो इसीलिए समय के महत्व को जानो, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। समय को बोलो रुक जा, रुकेगा क्या, समय तो चला जाएगा। तो इसीलिए समय को सफल करो, बाबा कहते हैं तुम्हें समय को सफल करना है। तो जितना जितना हम समय को सफल करते हैं उतना उतना क्या होती है, हमारे जीवन में सफलता आती जाती है। ओम शांति।